Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Dhyaye Nityam Mahesam Rajata Giri Nibham Charuchandravatansam Ratnakalpojvalangam Parasumrigavara Vitihastam Prashannam Padmasinam Samantat Stutamamaraganer Vyagrakritim Vasanam Visvadhyam Visvavandhyam Nikhilabhayaharam Panchavaktram Trinetram Narayanam Padmabhavam Vasishtam Saktim Chatatputra Parasarancha Vyasam Sukam Gaudapadam Mahantam Govinda Yogindramathasya Sishyam Sri Sankaracharya Mathasya Padma Padancha Hasta Malakancha Sishyam Tantu Takam Vartikakaramanyan Asmat Gurum Santatamanatosmi Vishuddha Jnana Dehaya Trivedi Dibhya Chakshuse Shreyaha Prapti Nimittaya Namaha Somardha Dharine Om Shanti 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 Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Namah Shivaya Shivaya Nama Om
Shivaya Nama Om
Shivaya Nama Om Namah Shivaya Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Namah Shivaya Shivaya Nama Om
Shivaya Nama Om
Shivaya Nama Om Namah Shivaya Haraya Nama Om Haraya Nama Om Haraya Nama Om Namo Haraya Haraya Nama Om
Haraya Nama Om
Haraya Nama Om Namo Haraya Haraya Nama Om Haraya Nama Om Haraya Nama Om Namo Haraya
Haraya Nama Om Haraya Nama Om
Haraya Nama Om Namo Haraya Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Namo Bhavaya Bhavaya Nama Om
Bhavaya Nama Om
Bhavaya Nama Om Namo Bhavaya Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Namo Bhavaya Bhavaya Nama Om
Bhavaya Nama Om
Bhavaya Nama Om Namo Bhavaya मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम नमो मृडाय मृडाय नम ओम
मृडाय नम ओम
मृडाय नम ओम नमो मृडाय मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम नमो मृडाय मृडाय नम ओम
मृडाय नम ओम
मृडाय नम ओम नमो मृडाय शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम नमः शिवाय शिवाय नम ओम शिवाय
नम ओम
शिवाय नम ओम नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम्
भज मन शिव शिव निरन्तरम्
जप मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम्
रट मन शिव शिव
निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
ओम 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 कृष्ण यजुर्वेदीय मंत्रोपनिषद श्वेताश्वत्तर उपनिषद के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय के तेरहवें मंत्र है।
यो देवानां अधिपो यस्मिन् लोका अधिश्रितः
यो देवानां अधिपं यस्मिन् लोका अधिश्रितः
स ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम
कस्मै देवाय हविषा विधेम
सूक्ष्मातिसूक्ष्मम् कलिलस्य मध्ये
सूक्ष्मातिसूक्ष्मम् कलिलस्य मध्ये
विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्
विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्
विश्वस्यैकम् परिवेष्टितारम्
विश्वैकम् परिवेष्टितारम्
ज्ञात्वा शिवम् शान्तिमत्यन्तमेति
ज्ञात्वा शिवम् शान्तिमत्यन्तमेति
य एव काले भुवनस्य गोप्ता
य एव काले भुवनस्य गोप्ता
विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः
विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः
यस्मिन्युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च
यस्मिन्युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च
तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशाच्छिनत्ति
तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशाच्छिनत्ति
स्कृतात्परं मण्डमिवाति सूक्ष्मम्
धृतात्परं मण्डमिवाति सूक्ष्मम्
ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम्
ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम्
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम्
विश्वैकं परिवेष्टितारम्
ज्ञात्वा देवं देव devam mucchate sarva pasai.
Jitva devam mucchate sarva pasai.
Shruti उस कारण ब्रह्म को अनेक रूप से प्रतिपादन करती हैं। यो देवानाम अधिपः, जो समस्त देवताओं का पालन करने वाला है, यस्मिन् लोका अधिश्रितः, जिसमें संपूर्ण लोक आश्रित हैं। या ई से, और जो सबके ऊपर शासन करता है, शासन करने वाला है, प्रश्न हुआ कि किस किस पर शासन करता है विशेष रूप में। अस्य द्विपदः चतुष्पदः, जो द्विपदी हैं और चतुष्पदी हैं, उन शब्द का वह ईश है, शासन करता है। ऐसा जो कह स्वरूप है कस्मयी, ऐसे देवता को हम लोग अविशा विदेम, कुछ विशेष विशेष भेंट वस्तु अर्पण करके हम उसकी पूजा करते हैं। भविष्य के द्वारा हम उसकी आराधना करते हैं, उस परमात्मा की। ये तो हो गया मंत्र की सामान्य व्याख्या। अब इस पर विचार करें, वह परमात्मा समस्त देवताओं का अधिपा है। पहले के मंत्र में यह कहा था कि वह परमात्मा देवताओं का उत्पादक है, प्रभवश्चोद्भवश्च। समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाला भी वही है, उसके द्वारा उत्पन्न होकर उसी के द्वारा वह वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। वृद्धि को प्राप्त हैं का मतलब होता है विकास को प्राप्त हुए। हम जैसे पैदा हुए थे, उसी के साथ साथ हमारा मन भी पैदा हुआ और इंद्रियां भी पैदा हुई। अध्यात्म में, लेकिन उस समय न तो हमारा मन विकसित हुआ था, न तो इंद्रियां ही विकसित हुई थी। धीरे धीरे हमारा मन भी विकसित होता गया, हमारी बुद्धि विकसित होती गई और हमारे इंद्रिय विकसित होते गए। इंद्रिय विकसित हो गए, होते गए का अभिप्राय हो गया कि इंद्रियों में कर्म करने की पूर्ण सामर्थ्य आ गया। मन विकसित हो गया का मतलब हो गया कि मन बुद्धि निर्णय करने की क्षमता वाली हो गई। नहीं तो बचपन में हम छोटे थे, जैसे कि आप अपने बच्चों को देखते हो, छोटे छोटे नाती पोतों को, कहीं उसकी मां चक्कू को वहीं छोड़ गई तो वह उसको देखकर पकड़ने के लिए आकर्षित होता है, वो चक्कू को पकड़ना चाहता है। उसकी बुद्धि, उसका मन यदि विकसित हुआ होता तो वह यह समझता कि यह मेरे अहित का है, मुझे इसको पकड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उस पकड़ के सीधा मुख में लेना शुरू कर देता है। कहीं अग्नि है तो उसको भी पकड़कर मुख में लेना शुरू कर देता है, पकड़ने की कोशिश करता है, कुछ भी देखता है तो पकड़ता है और मुख में ही डालना चाहता है। इससे ये हुआ कि मन बुद्धि इंद्रियां विकसित नहीं हुई है। विकसित होने का मतलब हुआ विचार करके हिताहित का निर्णय करने की जो क्षमता है वही अंतकरण बुद्धि का विकास है, इंद्रियों का विकास है। और हिताहित पर विचार करने की क्षमता जहां नहीं है वही बुद्धि का अविकास बना है। तो कल के मंत्रों में ये बात कही गई थी कि वो परमात्मा समस्त देवताओं का वह प्रभाव भी है, उत्पादक भी है और उद्भव भी है, माने विकास का कारण भी बना हुआ है। और ये विश्वाधिपः वहां पर भी है और यहां आ गया है ये यो देवानाम अधिपः, वहां पर भी अधिपः है यहां पर भी अधिपः है। लेकिन उस मंत्र में सारे विश्व का अधिपः बता दिया गया है और इस मंत्र में देवानाम अधिपः, देवताओं का स्वामी है, अधिपति है। अधिपः माने अधिपति है देवताओं का। यो देवानाम अधिपो यस्मिन् लोका अधिश्रिताः, जो समस्त देवताओं का अधिपति है और जिस पर सारे देवता आश्रित हैं। क्योंकि और मंत्रों में ये बात आई है कि ये सारे के सारे इंद्रियां किसके लिए काम करती है, क्योंकि यहां उपलक्षण है देवता, इंद्रियों को ही देवता कहा गया है। कि इंद्रियों को देवता कहने के कारण ये देवताएं अर्थात इंद्रियां किसके लिए काम करती है। कुर्सी में बैठ जाओ। तो सामान्य यदि व्यक्ति से पूछा जाए तो वह कहते हैं कि यह तो मेरे लिए काम करती है। हर व्यक्ति यही कहेगा कि इंद्रियां किसके लिए काम करती हैं, तो सामान्य व्यक्ति यही कहेगा कि इंद्रियां मेरे लिए काम करती हैं। लेकिन उपनिषद का कहना है कि ये सारे के सारे इंद्रियां तुम्हारे लिए नहीं, उस आत्मा के लिए काम करती है। यस्मिन् लोकाधिश्रिता, जिसमें वह टिकी हुई है उसी के लिए यह काम करती है। पहले लोक का अधिपति बताया, अब बताया लोक का आश्रय। क्योंकि वेदांत विवर्तवाद को मानता है, अन्य वादों की अपेक्षा विवर्तवाद को मानता है और विवर्तवाद के सिद्धांत के अनुसार जो विवर्तित पदार्थ जिस अधिष्ठान में विवर्तित हो रही हैं वो सारे के सारे विवर्तित पदार्थ विवर्त के अधिष्ठान पर आश्रित हैं। क्योंकि उसके विवर्तित पदार्थों का अस्तित्व अधिष्ठान से भिन्न न होने के कारण सब उसी में आश्रित हैं। तो यस्मिन् लोकाधिश्रिता, जिस पर ये सब लोक, लोक्यते दृश्यते इति लोक, लोक शब्द का अर्थ ये सब लोक ही है, ये सब लोक हैं क्योंकि दिखता है इसलिए लोक हैं। आप भी लोक हैं, हम भी लोक हैं, जिस कुर्सी पर आप बैठे वो भी लोक है, जिस दरी पर आप बैठे वो भी लोक है, सब लोक हैं क्योंकि सब दिख रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, इसलिए सब लोक हैं। कोई प्रत्यक्ष लोक हैं, कोई परोक्ष लोक हैं, कोई प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहे हैं प्रत्यक्ष, और कोई परोक्ष अनुमान के द्वारा निश्चय हो रहा है, दिखा जा रहा है, सभी लोक हैं। सामान्यतया तो 14 लोक हैं कहते हैं, पृथ्वी से लेकर भूरादि ऊपर के 7 लोक और पृथ्वी को छोड़कर नीचे, पृथ्वी से नीचे के 7 लोक। ये सारे के सारे लोक कहां प्रतिष्ठित हैं? चतुर्दश लोक। ये चतुर्दश लोक उसी में आश्रित हैं। अब पुराणों ने, शास्त्रों ने जो चतुर्दश लोक कहा है, वही तो चतुर्दश लोक माने पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय और अंतकरण चतुष्टय, यही चतुर्दश लोक हैं। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय और अंतकरण चतुष्टय, ये सब चतुर्दश लोक यानी ये चौदह अवयव जो सूक्ष्म शरीर के हैं, ये कहां आश्रित हैं? उसी कुटस्थ में आश्रित है। क्योंकि कुटस्थ शब्द का अर्थ ही वेदांत में कहा गया है देह द्वयावच्छिन्न अधिष्ठान चैतन्य। स्थूल सूक्ष्म देह द्वय अधिष्ठान जो चैतन्य है उसको बोलते हैं कुटस्थ। तो वहीं से पैदा हुआ, उसी से पैदा हुआ और वहीं आश्रित है। यस्मिन लोका अधिश्रिता या इसे अस्य द्विपद चतुष्पद, जो इस संसार में, इस लोक में विद्यमान है द्विपद और चतुष्पद, उन सबको अनुशासन करने वाला, उन सबका ईशन करने वाला जो है उस वही परमात्मा है। इस मंत्र की व्याख्या में स्वामी श्रद्धेय अखंडानंद सरस्वती महाराज ने बड़ा ही सुंदर मस्ती से व्याख्या की है। किसी किसी मंत्र की जो व्याख्या करते समय में भी विद्वानों को मस्ती आती है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा मस्ती से व्याख्या कर देते हैं। द्विपद चतुष्पद, इसकी उन्होंने खूब व्याख्या की है, कोई झंझट नहीं मानी इसकी व्याख्या करने में, कोई आलस्य नहीं आया उनको इस व्याख्या कर। कभी कभी तो आलस्य आता है, झंझट लगता है। द्विपद शब्द का सामान्य अर्थ होता है दो पांव वाले, अर्थ सामान्यतया दो पांव वाले तो आप और हम हैं। और चतुष्पद का सामान्य अर्थ होता है पशु, पशु चतुष्पद पशु, गाय भैंस बकरी आदि। ये जो चतुष्पद गाय भैंस बकरी आदि हैं और द्विपद मनुष्य आदि हैं, इन सब का वह शासन करता है, अनुशासन करता है, नियामक है। इस अर्थ का होता, अर्थ होता है शासन करता। द्विपद कौन है? तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं कि मनुष्य समाज को चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटने का मतलब चार आश्रमों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, ये चार आश्रमों में बांटा गया है। और इन चार आश्रम में से दो आश्रम केवल द्विपदा हैं और दो आश्रम चतुष्पदा हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना? आपको ये बात समझ में आ गई होगी, द्वीप दो आश्रम द्विपदी हैं और दो आश्रम चतुष्पदी हैं। चतुष्पदी पशु होते हैं, द्विपदी मनुष्य होते हैं। आपको समझ में आई कि नहीं? आ जाएगी, आप बहुत समझदार हैं। स्वामी अखंडानंद जी महाराज किस पर संकेत करना चाहते हैं इन मंत्रों के व्याख्या में, इस वाक्यों के द्वारा? ब्रह्मचर्य जो आश्रम है वह द्विपदा है, वह जब भी जहां भी जिस समाज में भी रह जाएगा, चाहे वह आश्रम में रहे चाहे घर में रहे, वो द्विपदा ही होगा। वह किसी और से संबंध रखकर अपने को पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकता। तो इसलिए वो हमेशा द्विपदा रहेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम में जब तक रहेगा। और संन्यास आश्रम ऐसा है कि यदि पहले उसने द्विपद और लोगों से संबंध संपर्क रखा भी होगा तो उसको पूर्ण रूप में परित्याग करना पड़ेगा, तो भी वह द्विपद ही है ना। तो ब्रह्मचारी और सन्यासी ये तो हैं द्विपदी, क्योंकि वहां दूसरे के साथ उसका संबंध नहीं रहता। ना तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी ये कह पाएंगे कि ये मेरा पति है या मेरा पत्नी है, ना तो सन्यासी ये कह पाएगा सन्यासिनी ये कह पाएंगे कि ये मेरा पति है ये मेरी पत्नी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रह्मचारी और सन्यासी ये हमेशा द्विपदी ही रहेंगे, ब्रह्मचारी आश्रम और सन्यास आश्रम ये हमेशा द्विपदा, ये मनुष्य की योनि है। और उसके बाद जब वो विवाह कर लेते हैं, विवाह करने के बाद गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। गृहस्थ आश्रम का पहला उपक्रम ही है चतुष्पदा, चार पांव से संबंधित होना। कोई कन्या शादी करती है तो उस कुमार के दो पांव को अपने साथ जोड़ लेगी, वो चतुष्पद हो गई। और कोई कुमार ब्रह्मचारी शादी कर लेता है तो उस कन्या के दो पांव को अपने साथ जोड़ लेगी। इसीलिए शादी के बाद ये कहा जाता है पति पत्नी के संबंध को कि ये अर्ध हैं, अर्धांगिनी शब्द प्रयोग किया जाता है। ये पता नहीं, क्योंकि पुरुषों को बारे में तो अर्धांगिनी करके परिचय करते हैं, स्त्रियों के बारे में कोई पुरुष अपनी स्त्री अपनी पत्नी का परिचय देना चाहता है तो कहता है कि मेरी अर्धांगिनी है, सभ्य भाषा में यदि करना चाहे तो। असभ्य भाषा में तो वाइफ नाइफ क्या क्या कहते हैं वो कहते रहे हमको पता नहीं वाइफ क्या होता है नाइफ क्या होता है, शब्द सुना इसीलिए प्रयोग कर दिया है। आप लोगों से सुनते रहते हैं वाइफ नाइफ, वाइफ मतलब नाइफ काटने वाली ही है वो, तो पता नहीं ऐसा क्यों कहना शुरू कर दिया है। लेकिन वे लोग फिर वो जो वाइफ स्त्री है पत्नी है कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मेरा अर्धांगी है अर्धांग है, प्रचलन में नहीं आया है, कहना तो चाहिए। पुरुष यदि अपनी पत्नी को मेरी अर्धांगिनी है कहता है तो पत्नी भी पुरुष के अपने पति के बारे में यही परिचय देना चाहिए कि ये मेरा अर्धांग है। लेकिन ऐसा प्रचलन में नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, आना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के पोषक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम एकांगी रमण होता ही नहीं है, वो तो चतुष्पदा का ही आश्रम है। वो और उसके अलावा अपने पुत्र पौत्रियों का जिम्मा लगाकर वानप्रस्थी में भी स्त्री वानप्रस्थी होना चाहे तो भी पुरुष को साथ लेकर रह सकती है, पुरुष वानप्रस्थी होना चाहे तो पत्नी को साथ में लेकर बैठ सकता है रह सकता है। गृहस्थाश्रम में भी दो साथ में रह सकते हैं, रहते ही हैं, रहना ही चाहिए। वानप्रस्थाश्रम में भी दो साथ में रहने ही है, रहते ही हैं, रहने का अनुमति है। ये नहीं कि वानप्रस्थ में अकेले रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन वेद ने शास्त्र ने सन्यासी दो साथ में रह नहीं सकते, सन्यासी का मतलब स्त्री और पुरुष, सन्यास लेकर साथ में रह नहीं सकते। तब तो फिर जो संबंध था उस संबंध का विच्छेद ही सन्यास है, क्योंकि कोई संबंध प्राप्त नहीं है वो अवस्था ब्रह्मचारी की है, और जो संबंध प्राप्त हुआ है उस संबंध का विच्छेद का नाम सन्यासी है। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना भाई, पत्नी मर गई तो वो खुद द्विपदा हो गया, ऐसा नहीं समझना। पत्नी मर गई या पति मर गया वो स्वतः द्विपदा हो गया, तो स्वतः सन्यासी हो गया इस परिभाषा से, ऐसा नहीं है। इन सबके रहते हुए भी संबंध कोई न होना, संबंध का मतलब शारीरिक संबंध की बात नहीं कर रहे हैं, संबंध न होना का मतलब होता है कि तुम संकल्प करके, तुम निश्चय करके, तुम पृथक हो जाओ कि आज के बाद इसके साथ मेरा कोई व्यवहार नहीं, कोई संबंध न लौकिक व्यवहार में इसके साथ मेरा संबंध होगा, न शास्त्रीय कर्मों में इसके साथ मेरा संबंध होगा।